हरे,
हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है श्री श्री गौर निताय मंदिर पंचशील में रविवार के दिन कृष्ण कथा में। अब हम बहुत जल्दी भगवान श्री कृष्ण के बहुत दयालु, बहुत कृपामय, पतित पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के उत्सव को मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। नमो महावदन्नाय। वदन्नाय का अर्थ है दान, दान देने वाला, महादान देने वाला। चैतन्य महाप्रभु कैसे हैं? महावदन्नाय, बहुत बड़े उधार हैं, अति उधार गौरा। ये गौर बहुत उधार है। पति तपावन हेतु तव अवतार, आपका अवतार ही केवल पतितों के उधार के लिए है। तो ऐसे दयामय करुणामय महावदन्नाय अवतार, महावदन्नाय चैतन्य महाप्रभु को क्यों कहते हैं? हमारे कृष्ण मंत्र में किसको प्रार्थना करते हैं भगवान की सेवा में लगाने के लिए? राधा रानी को। तब वो कृष्ण को कहेगी, तब कृष्ण हमारे को सेवा में लगाएंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु राधा के भाव में कृष्ण है, तो राधा के भाव में कृष्ण है इसका मतलब दयामय है। जो करुणामय राधा है वो तो श्री चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में समाई हुई है। तो यहां हरे शब्द चैतन्य महाप्रभु का संबोधन भी माना जाएगा, क्योंकि राधा भाव लेके चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं और उन्होंने ये हरे कृष्ण मंत्र हम सबको जपने के लिए दिया है। पहले ही वेदों में था, लेकिन उन्होंने सरलता से सबको ये एक शब्द लिखा है, अचराद चिराद अधिकतम, चिरकाल से जो नहीं दिया गया था, बहुत समय से जो चीज नहीं दी गई थी। क्या नहीं दिया गया था? निज गुप्त वित्तम। निज का मतलब स्वयं अपना, गुप्त का मतलब बहुत रहस्यमय, वित्तम का मतलब धन। जो अपना धन था स्वयं का, जो बहुत समय से भगवान ने नहीं दिया था, क्या है स्वयं का धन? नाम अमृतम, कृष्ण नाम, वो चैतन्य महाप्रभु ने आके दिया। इसलिए राधा भाव में आए तो महावदन्नाय है। और ये श्लोक किसने कहा है? ये श्लोक रूप गोस्वामी पाद प्रयागराज में चैतन्य महाप्रभु से मिले, तब उनके मुख से इस श्लोक का उच्चारण हुआ। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते। श्री रूप गोस्वामी का ये श्लोक है और प्रयागराज में इस श्लोक का उच्चारण किया है उन्होंने। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अपने आप इस प्रेम को किसी को नहीं दिया, स्वयं तो श्रीवास आंगन में अपने निज भक्तों के संग में बैठ के इसको आनंद लिया, लेकिन इस प्रेम को बांटने के लिए उन्होंने अपने बहुत अंतरंग भक्तों को, भक्तों के अंदर शक्ति का संचार किया और इस का प्रचार का आदेश दिया। तो आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे चैतन्य महाप्रभु ने कैसे रूप गोस्वामी के अंदर अपनी शक्ति का संचार किया कि वो हरि नाम का प्रचार कर सके। तो जो जानते हैं उनके लिए तो अच्छा ही है, नहीं जानते हैं वो भी जान लें। भगवान श्री कृष्ण का निज धाम वृंदावन है, और जो वृंदावन अभी यहां से दिल्ली से 130 किलोमीटर है, ये भगवान के गोलोक धाम से नीचे उतर के आया है। और जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं थे तो उन्होंने यहां अपनी सब लीलाएं की थी, लेकिन भगवान के जाने के बाद ये धाम लुप्त हो गया था। एक बार लुप्त हो गया था जरासंध के आक्रमणों के बाद, तो इसका पुनः निर्माण किया था भगवान श्री कृष्ण के परपोते वज्रनाभ ने। दोबारा 500 साल पहले, 1000 साल पहले इस वृंदावन को मोहम्मदन शासन के समय में शिकारगाह बना दिया था मुगलों ने। यहां पूजा प्रतिष्ठा करने वाले मंदिर वंदर सब खत्म हो गए थे। बस कोई साधु ऐसे एकांत में कहीं रहते हो तो संभव है। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो इस वृंदावन को पुनः दुनिया को प्रकट करके देना था। तो वृंदावन को पुनः प्रकट करने के लिए उन्होंने अपने दो, वैसे छह, लेकिन छह में से भी विशेष रूप से पहले दो परिकर चुने। परिकर मतलब उनके गोलोक के साथी, जो उनके वहां उनके संग रहते हैं। और वो दो भाई, बड़ा भाई सनातन गोस्वामी, छोटा भाई रूप गोस्वामी, इनके संग और चार गोस्वामी बाद में और जोड़े गए, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। इन्होंने जितने मंदिर इस वक्त वृंदावन में, आदि मंदिर हैं सात, और आठवां मंदिर है बांके बिहारी का, और नवा मंदिर है राधा वल्लभ। ये है प्राचीन मंदिर वृंदावन की। वैसे तो 5000 मंदिर है, लेकिन ये प्राचीन मंदिर है। ये सब 500 साल के अंतर्गत ही बने हैं, और ये सात दिवाले इन गोस्वामियों के द्वारा निर्मित हुए हैं चैतन्य महाप्रभु के आदेश के ऊपर। चेतन महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को भक्ति रस की शिक्षा दी 10 दिन प्रयागराज में, इलाहाबाद प्रयागराज में 10 दिन तक। 10 अश्वमेध घाट, अब वृंदावन जाते हैं बहुत सारे घाट हैं, अब नाम भी हमको उनके नहीं आते हैं। एक केशी घाट हमको नाम पता लगता है जहां जमुना है, लेकिन बहुत से घाट हैं, कोई समझो कि 40-50 घाट है लाइन में लंबे लंबे, हमें उनके नाम नहीं आते। गऊ घाट, वारा घाट, ये सब घाट पहले जहां स्नान किया था जन, ऐसे ऐसे गंगा जी के तट के ऊपर प्रयागराज में एक घाट है, उसका नाम है 10 अश्वमेध घाट। वहां चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को भक्ति रस की शिक्षा दी, भक्ति शास्त्र की शिक्षा दी, और कहा कि ये मैं आपको सूक्ष्म रूप में दे रहा हूं, बिंदु के रूप में दे रहा हूं, इसका आप विस्तार कीजिए। तो इसलिए रूप गोस्वामी ने जो बिंदु दिया था महाप्रभु ने, उसको सिंधु के रूप में, भक्ति रसामृत सिंधु के रूप में निर्माण किया। तो ये शिक्षा एक अध्याय में है, उस शिक्षा का थोड़ा सा हम अब अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। ऐसी जानकारी दी जाए कि ये दोनों असल में ब्राह्मण हैं। ये तीन भाई हैं, बड़ा सनातन, फिर रूप और तीसरा उनका भाई अनुपम, उनका बेटा जीवा गोस्वामी। तो ये ब्राह्मण है, दक्षिण भारत के शाश्वत ब्राह्मण है, लेकिन किसी कारण से बंगाल के अंदर गए और बड़े बुद्धिमान थे, तो वहां के उस वक्त के नवाब हुसैन शाह ने उनको अपने मंत्रिमंडल में ले लिया। तो क्योंकि उस वक्त में वो ब्राह्मण होते हुए भी उस वक्त की जो मोहम्मदन गवर्नमेंट थी उसका सेवा कर रहे थे, उनके नाम भी बदल दिए थे, दबीर खास और साकिर मलिक, तो वो अपने आप को ब्राह्मण होते हुए, बहुत वेदज्ञ होते हुए भी, पंडित होते हुए भी अपने आप को कहते हैं कि हम अधम काम कर रहे हैं और नीच सेवा कर रहे हैं, ऐसे उनका भाव था। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से वृंदावन जाने का तो संकल्प किया, लेकिन वृंदावन न जाकर सीधे चले गए रामकेली, और रामकेली अभी बांग्लादेश में है। वहां ये दोनों भाई नवाब हुसैन शाह की गवर्नमेंट में, एक मुख्यमंत्री था और एक वित्त मंत्री था, इन दोनों को वहां मिले और दोनों को अपनी कृपा दी और कहा श्री कृष्ण बहुत जल्द आपको अपनी सेवा में स्वीकार करेंगे। महाप्रभु के वहां से आते ही रूप गोस्वामी तो कैसे भी 10,000 स्वर्ण मुद्रा एक बैंकर सेठ के पास रख के, दो बड़ी नाव सोने की मुद्राओं की भरकर अपने ग्राम गए। दो नावों में जितनी भी संपत्ति थी वो ब्राह्मण वैष्णव में बांटा, अपने रिश्तेदारों में बांटा, और कुछ आपतकाल में काम आए इसके लिए रखा। और फिर वहां से श्री चैतन्य दो आदमियों को भेजा कि पता करो चैतन्य महाप्रभु कहाँ है। जब समाचार मिला कि वो वृंदावन जा रहे हैं, तो वृंदावन से आते हुए चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी का मिलन हुआ है प्रयागराज में। तो प्रयागराज में जब रूप गोस्वामी मिले हैं चैतन्य महाप्रभु से, तो वहां लिखा है एहि मत दश दिन प्रयाग रहिया, श्री रूप दीक्षा दिला शक्ति संचारिया। 10 दिन तक प्रयाग में रूप गोस्वामी को दीक्षा दिया, शिक्षा दिया और अपनी शक्ति का संचार किया। गौर शक्ति बिना नहीं प्रचार, कोई भी आदमी जब तक चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक प्रचार नहीं कर सकता। ये हमारी इसलिए कहते हैं गौरवाणी प्रचार ने, गौरंग महाप्रभु की कृपा से गौरवाणी का प्रचार होगा चैतन्य महाप्रभु का। तो यहां कृष्ण शक्ति बिना नहीं ताए परिवर्तन, चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करके रूप गोस्वामी को क्या दिया, बताते हैं मैंने क्या दिया। प्रभु कहे, मतलब चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, सुन रूप भक्ति रसेर लक्षण। हे रूप गोस्वामी, भक्ति रस जो है, भक्ति का जो रस है, जो आनंद है, रस से रास लीला शब्द निकला है। रस का मतलब रास, रास का मतलब भगवत प्रेम। तो उस रस को, उसके लक्षण सुनो रूपक। इसलिए रूप गोस्वामी को हम मानते हैं रस आचार्य, भक्ति रस आचार्य। सनातन गोस्वामी को हम मानते हैं सिद्धांत आचार्य, उन्होंने भक्ति के सिद्धांतों को स्थापित किया। रूप गोस्वामी ने भक्ति के रस, इसने ना किताब पुस्तक कौन सा लिखा, भक्ति रस अमृत सिंधु। तो रस आचार्य है। रघुनाथ दास गोस्वामी वैराग्य आचार्य है, निज वैराग्य विद्या। तो यहां कहते हैं सूत्र रूपे कही, मैं आपको सूत्र रूप से कहूंगा। सूत्र रूप से कहूंगा मतलब थोड़े में कहूंगा। विस्तार ना याए वर्णन, उसका विस्तार करने का वर्णन नहीं किया जा सकता है, इतना रस वो बहुमूल्य है कि उसको मैं सूत्र रूप में कहूंगा। ऐसे तो ब्रह्मांड भरी अनंत जीव गण, इस ब्रह्मांड में अनंत जीव गण है। 84 लाख योनि ते करे भ्रमण, कितने जीव है बोले 84 लाख योनियां, ये हम सब जो मानते हैं। तो कहां है ये सारे जीव, ये जीव केवल इस ब्रह्मांड में नहीं है, कोटि ब्रह्मांडों में ये सब जीव है, जगह सब जगहों पे है। ऐसे मानना कि चांद के ऊपर कोई जीव नहीं रहता है ये सत्य नहीं है। ये श्लोक कहता है हर जगह जीव है, हमको नहीं दिखते वो दूसरी बात है। हमको तो इस हवा में भी कुछ जीव नहीं दिखते, लेकिन कितने कीटाणु है इस हवा में हम नहीं देख सकते। इसका अर्थ ये थोड़ी कि जीव नहीं है। सूर्य लोक में भी जीव है, लेकिन उनका शरीर अग्नि का बना हुआ है, तो अग्नि में रह सकते हैं। तो पांच तत्वों में जो जीव जहां है उसमें उसका तत्व ज्यादा है। जल में जो रहते हैं उसमें जल तत्व ज्यादा है। नौ लख जल में रहते हैं, नौ लखानी जलम, जल में नौ लख रहते हैं। ऐसे जीवों का वर्णन करके चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इतने 84 लाख जीव हैं, लेकिन एक जीव है क्या? तब कहते हैं एक जीव क्या है, केश अग्रे शते का भाग पुनः शतांश करी तार सम सूक्ष्म जीवेर स्वरूप विचारी। एक बाल के आगे के हिस्से का 1000 टुकड़ा करके उस एक टुकड़े के और 1000 टुकड़ा करें उससे भी सूक्ष्म जीव है। इसका कहने का अर्थ क्या है? इसका कहने का अर्थ यह कि उसको देखा नहीं जा सकता। आप कहें कि नहीं है, ये आपकी बुद्धि की कमी है। वो इतना छोटा है कि देखा भी नहीं जा सकता, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता। कि ये जीव की सूक्ष्मता की बात करके फिर एकदम कहेंगे तार मध्य, तार मध्य मतलब इन सारे 84 लाख जीवों में तार मध्य स्थावर जंगम द्वि भेद। कुछ तो चलने वाले हैं और कुछ एक जगह खड़े हैं, ये दो प्रकार के हैं। जंगम में क्या आता है? त्रियक जल स्थल चर विभेद। कुछ चलने वाले कुछ नहीं चलने वाले। जो चलने वाले हैं उनमें पक्षी आदि आते हैं, जलचर आदि आते हैं, पशु आदि आते हैं। तार मध्य मतलब जो चलने वाले हैं उनके बीच में, पहले सारे फिर चलने वाले। चलने वालों के बारे में तारे मध्य मनुष्य जाति अति अल्प, अति अल्पतर जो चलने वाले हैं उनमें मानव सबसे कम है, उनमें सबसे कम मानव जाति है। तार मध्य वो मानव में भी मलेच्छ पुलिंद बौद्ध शबर ये नीच जातियां हैं। इनको ये पता नहीं है कि शास्त्र क्या है, वेद क्या है, इसलिए इनकी गणना होती है अनार्य में। आर्य नहीं, अनार्य। आर्य का मतलब वेद को मानने वाले, अनार्य का मतलब वेद के बारे में नहीं जानने वाले। तो इसके अंतर्गत तो ये सारे जिसको हम कहते हैं नीच वो जातियां आती हैं जो वेद के बारे में अथवा जो मानव जन्म का लक्ष्य उसके बारे में जानते ही नहीं है। वेद निष्ठ मध्य इनमें भी जो वेद को जानते हैं इनको छोड़ के, वेद निष्ठ मध्य अर्धेत वेद मुख्य माने, जो वेद मानने वाले हैं ना उसमें भी अर्ध एक कोई एक आधा है जो वेद को मानता है, नहीं तो केवल मुख्य माने। मुख्य माने मतलब बहुत से लोगों के हम हिंदू ऐसे तो कह देंगे हिंदू हम हैं, इसका मतलब है कि हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं, इसका मतलब हम वैदिक धर्म को मानने वाले। कहने वाले तो सब लिखते हैं कास्ट में तो हम ये हैं, लेकिन मानने वाले कितने? कहने वाले तो बहुत हैं कि हम धार्मिक हैं। ये प्रभुपाद इसका भावार्थ बहुत अच्छा लिखा है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम मानने वाले हैं, लेकिन उनमें से कहने वालों में मानने वाले कितने? कौन नियम कौन पालन करता है? कोई नियम पालन नहीं करता। तो जबान से कहने वाले तो बहुत सारे मानव में सुधरे हुए हैं, हम आ रहे हैं ऐसे तो कहते हैं, लेकिन वेदों का ऊपर चल प्रचलन तो कोई नहीं करता है। और फिर धर्मचारी मध्य बहुत कर्मनिष्ठ, इनको धर्मचारी कहते हैं, धर्म के ऊपर चलने वाले। केवल मुख से धर्म में, कर्म से धर्म में नहीं चलते, कर्म तो कोई खोटा करते हैं लेकिन मुख से कहते हैं हम धर्म। जैसे बहुत से लोग कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, काम क्या करते हो? क्या काम करते हो? हाँ, मैं शराब के दुख के गुच्छे के ऊपर काम करता हूँ। देखो ब्राह्मण ऐसे जनाई निकाल के दिखाएगा, काम क्या कर रहा है? यहाँ काम नौकरी कर रहा। तो कहते तो धर्म का, ये धर्मचारी तो हो गए, वर्ण आश्रम में अपने आप को विभाजित करते लेकिन उसका कर्म तो नहीं करते। तो ऐसे तो बहुत है जो धर्म के नाम में धर्म का तो कहते हैं लेकिन उसके ऊपर चलते नहीं। ये कौन कह रहा है? भगवान कह रहा है। कलयुग के लोगों की ये स्थिति है कि धर्म अपने आप को कहते हैं कि हम धर्म के मानने वाले हैं लेकिन धर्म के बारे में जानते भी नहीं है और जानते हैं तो भी चलते नहीं है। अब इन धर्मचारियों में कोई एक आधा है वो कर्मनिष्ठ है। कर्मनिष्ठ है कि कम से कम जो उसका कर्तव्य कर्म है उसको पालन कर रहा है। इसका मतलब ब्राह्मण है ब्रह्म का कर्म कर, ब्राह्मण का कर रहा है, क्षत्रिय क्षत्रिय का कर्म कर रहा है, वैश्य वैश्य का कर्म कर रहा है। कम से कम अपने कर्म में तो लगा हुआ है ना, या तो कोई अपने कर्म में ही नहीं लगा हुआ है। तो ऐसे कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। ऐसे बहुत से लोग कहते हैं हम कर्म कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उनमें से एक ज्ञानी मुश्किल से कोई श्रेष्ठ होता है जो कहता है कि ये सब जो हम कर्म कर रहे हैं ये बंधन में डालने वाला है, हमको तो भगवान को जानने का प्रयास करना चाहिए। तो इनमें से एक ज्ञानी कोई मुश्किल है। ये चैतन्य महाप्रभु कैसे कहां जीवों से लेकर आगे बढ़ रहे हैं और आगे कहेंगे कोटि ज्ञानी मध्य है एक जन मुक्त। ऐसे कितने सन्यासी साधु लाल कपड़ों में घूम रहे हैं, नाम भी अपने आप को वैज्ञानिक है, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, उनमें से मुक्त कौन है? कोई एक आधा मुक्त होता है, लाखों में से कोई एक ज्ञानियों में से मुक्त होता है। मुक्त होने का मतलब क्या है? मरने के बाद मुक्त होने का मतलब नहीं है, मुक्त होने का मतलब है संसार के आसक्ति से जो मुक्त हो, राग द्वेष से जो मुक्त हो, ऐसा कोई एक ज्ञानी में। तो ज्ञानी तो बहुत बड़ा है, वो जनक महाराज के लिए कहते हैं वो ज्ञानी है। कैसा ज्ञानी है? उसका परीक्षा के लिए कुछ साधु गए तो किसी ने कहा आग लगी है, साधु भागे कि मेरा लंगोटा कहाँ है, मेरा धोती कहाँ है, और महाराज जनक का राजमहल जल रहा था, उठे नहीं। तो कहते ये मुक्त है ज्ञानियों में कि कुछ जो जल रहा है, जिसका जिसका है उसका जल रहा है, वो बाकी तो साधु तो अपने धोती एक धोती उसके पीछे भागे कि मेरी कोई धोती नहीं जलती। तो ज्ञानी तो बहुत है लेकिन हमारा तो वे है भी कुछ धन नहीं है। एक साधु की धोती होती है उसके लिए बहुत परेशान होते हैं, कहां का ये कौन लेने जाए। तो ये मुक्त नहीं हुए ना, आसक्ति तो इतनी बनी हुई है कि छोटी चीज भी छोड़ने को तैयार नहीं। तो कोटि ज्ञानी मध्य कोई एक मुक्त, कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। कोटि मुक्त मध्य ऐसे लाखों लाखों कोटि का मतलब करोड़, करोड़ों में कोई एक ज्ञानियों में मुक्त होता है बंधन से। ऐसे मुक्त अगर करोड़ इकट्ठे हो जाए उनमें से कोई एक दुर्लभ कृष्ण भक्त। तो आप जरा ये विचार कीजिए कैसे भी श्री प्रभुपाद की कृपा से आप कृष्ण भावना अमृत संघ के संपर्क में आए हैं, कृष्ण भक्ति के रास्ते के ऊपर चल रहे हैं, तो कितने करोड़ों को आप क्रॉस करके आगे आए हैं। इसको ऐसे मानना चाहिए कि एक लाइन लंबी है कहीं आपको टिकट लेने की, हजारों लोग खड़े हैं लेकिन आप कैसे भी उसमें हजारों लोगों से निकल के आगे आए हैं दुर्लभ। ये ऐसे मानना चाहिए जो कृष्ण भक्ति कर रहा है वो कितना कितनी शांति हुई है। पहले तो 84 लाख, फिर उसमें से केवल 4 लाख मानव, 4 लाख मानव में भी कितने सारे जो है वो तो धर्म के ऊपर चलने वाले ही नहीं है। जो धर्म के ऊपर चलने वाले उसके उसमें भी बहुत कम है जो ठीक धर्म को मानते हैं, उनमें से भी कोई एक आधा ज्ञानी होता है, उनमें से कोई एक उन मुक्तों में से भी कोई एक कृष्ण भक्त। तो पहले तो ये समझना चाहिए कि हमें कितना बड़ा दुर्लभ अवसर मिला है कृष्ण भक्ति करने का। इसे तो महाप्रभु ये हमको मैथमेटिकली समझा रहे हैं, गणित के हिसाब से समझा रहे हैं। और फिर इसका मतलब मुक्त के बाद भक्त बनता है। जो कहते हैं मुक्ति चाहिए उसके बाद भक्ति शुरू होती, मुक्ति के बाद भक्ति शुरू होती। मुक्ति का मतलब संसार के आसक्ति से मुक्ति, राग द्वेष से मुक्ति। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। अब चेतन महाप्रभु अपना राय दे रहे हैं, कृष्ण भक्त निष्काम, एक कृष्ण भक्त है उसकी कोई कामना नहीं है, वो कृष्ण की सेवा ही उसका धर्म है, इसलिए वो शांत है। इसका मतलब अशांति का कारण क्या है दुनिया में? कामना। अशांत आदमी क्यों होता है? कुछ चाहता है, नहीं मिलता है तो अशांत होता है। तो कृष्ण भक्त कोई कामना नहीं है इसलिए शांत है। तो तीन और का नाम लिया, भुक्ति, भुक्ति का मतलब संसार में काम करने वाले, भोग करने वाले, भुक्ति का मतलब भोग करने वाले। कौन सा भोग करने वाले? मैं कमाऊंगा मैं खाऊंगा, ये पहला भोगी, भाई मैं काम करने जा रहा हूं कमा रहा हूं खा रहा हूं, सब दुनिया ऐसे ही कर रही है। इसमें से कुछ समझदार होते हैं, कहते नहीं नहीं नहीं, मैं जा रहा हूं मैं कमा रहा हूं लेकिन मैं अकेला नहीं खाऊंगा, मेरे आने वाली पीढ़ियों के खाने के लिए उनके नाम के लिए कुछ काम करके जाऊंगा। वो क्या करेगा? कोई धर्मशाला बनाएगा, कोई अनाथशाला बनाएगा, तो ऐसा कोई धार्मिक कार्य करके जाएगा, वो भी कर्म के अंतर्गत आता है। तो उससे क्या होगा, मैं अकेला भुक्त तो नहीं भोगी नहीं हूं, हमारे पूर्वज भी पुराने आने वाली पीढ़ियों में कुछ लोग और भोग करेंगे इसका, के हमारे दादा ने बनाई थी। इससे भी आगे कुछ होते नहीं नहीं, नहीं इधर का भोग हमारे लिए इतना काफी नहीं है, हमारी इच्छा है कि हम स्वर्ग का भोग करें, वो भी भुक्ति में आए कि अच्छे बहुत बड़ा अच्छा कर्म करेंगे, यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे। क्यों? बोला स्वर्ग में जाके भोग करना। स्वर्ग में क्या मिलेगी? अप्सराएं मिलेंगी, सोम रस मिलेगा, तो भोग की इच्छा हो गई ना, तो काम ही हो गया ना, तो कामना तो रह गई ना, तो भुक्ति की ये कामना है। और फिर मुक्ति, ये ज्ञानियों का लक्षण है, हम भगवान में मिलकर एक हो जाएंगे। तो उनकी ये इच्छा है, क्या इच्छा है? भगवान के साथ एक होने का मतलब हम भगवान बन जाएं, तो ये उनकी कामना है। और भगवान बन नहीं सकेंगे इसलिए अशांत रहेंगे। और सिद्धि योगियों का लक्ष्य है, ऐसी सिद्धियां हो कि दुनिया को चमत्कार करके दिखाएं, हाथ में मिट्टी उठाएं और सोना बना के दिखा दें, लोग कहेंगे वाह वाह महाराज कमाल कर दिया, मिट्टी को सोना बना दिया। ये महाराज ने कोई एक तोला सोना मुश्किल से बनाया है, भगवान ने इतनी सोने की खान बनाई है, वो भी अफ्रीका के जंगलों में बनाई है जहां मूर्ख लोगों के पास पड़ी है। सोना कहां बनाया है? अपनी कहां बनाया? कहां? काले लोगों के देश में, और खाने पड़ी है। वो भगवान को का चमत्कार किसी को अच्छा नहीं लगता है। सुनार की दुकान में 5-10 किलो सोना पड़ा है, वो उसको नहीं मानते हैं, और जो ये इतना सोना दिखा दे उसको बोले ये बड़ा सिद्धि उसकी है। तो ये सिद्धि, इसकी भी इच्छा क्या है कि लोग मेरा बड़ा मेरी बहुत सम्मान हो, मेरा नाम हो। ये योगियों का लक्षण है, योगी सिद्धि चाहता है। सिद्धि के पीछे उसकी इच्छा क्या होती है? प्रतिष्ठा, मेरा प्रतिष्ठा हो। इसलिए ये सब शकल अशांत, इनमें से किसी को शांति प्राप्त नहीं होती, कामी को भी शांति प्राप्त, भोगी को भी नहीं, योगी को भी नहीं, और ज्ञानी को भी नहीं। रोगी को तो वैसे भी नहीं है, बाकी बचे रोगी, वो तो वैसे भी शांत नहीं है। रोगी का नाम यहां लिखा नहीं है क्योंकि बाकी सब रोगी है, ये तो छांटी वाले लाए हैं ऊपर। अब यहां से आगे इसकी पुष्टि करने के लिए एक श्लोक चेतना महाप्रभु ने कहा है श्रीमद् भागवत से, मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण प्रायणः सुदुर्लभः प्रशांत आत्मा कोटिषु अपि महामुने। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम, कितने सारे मुक्त हों, कितने सारे सिद्ध हों, उनमें से भी भगवान नारायण का शरणागत कोई एक मुश्किल से होता है। और फिर सदुर्लभ, वो मिलना बहुत मुश्किल है, प्रशांत आत्मा वो बहुत शांत होता है। कोटिषु अपि महामुने, कैसे लाखों ऐसे लोग हों उनमें से कोई ऐसा साधु मिलना बहुत मुश्किल है। एक जन्म में नहीं, बहुनाम जन्म नाम उनते ज्ञानवान माम प्रपद्यंते वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सु दुर्लभ। वहां महात्मा दुर्लभ, यहां कोटिष्वपि महामुनि दुर्लभ। तो ऐसे कृष्ण भक्त, नारायण भक्त, राम भक्त, विष्णु भक्त ये मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत दुर्लभ है। अब चैतन्य महाप्रभु एक बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं कि ये भक्ति प्राप्त कैसे होगी, जो इतनी दुर्लभ भक्ति है वो कैसे प्राप्त हो। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड भ्रमिते, ब्रह्मांड का मतलब है एक ब्रह्मा जो सृष्टि करता है वो एक ब्रह्मांड, ऐसे अनेक ब्रह्मा अनेक सृष्टियां करते हैं, हमारा ये ब्रह्मांड सबसे छोटा ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड का मतलब ब्रह्मा की सृष्टि, जिस जहां ब्रह्मा ने बनाया है, तो एक ब्रह्मा जो हमारा है उसने इस ब्रह्मांड की सृष्टि की, ऐसे बहुत सारे और ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मा एक नहीं है। ये तो श्रीमद भागवत में भगवान श्री कृष्ण से ब्रह्मा जी मिलने आते तो पूछा कौन से ब्रह्मा है, बोले चार सर वाले। कोई पूछते ब्रह्मा कौन सा, के कोई कोई ब्रह्मा है क्या, ब्रह्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो भगवान ने उस ब्रह्मा जी को कुछ नहीं कहा, ब्रह्मा अंदर आया और तब तक सब और कोटि कोटि ब्रह्मा मंगाए, कोई 8 सर वाला, कोई 16 वाला, कोई 80 वाला, कोई 50 500 हजार वाले। ब्रह्मा जी सबको देख के बड़ा आश्चर्यचकित, ये सब कौन है। तो मैं समझा मैं ही अकेला ब्रह्मा हूं, इतने सारे और ब्रह्मा है, ये तो बहुत सारे ब्रह्मांड है। तो इन ब्रह्मांडों में कई जीव ऐसे भ्रमण कर रहे, उनमें से कोई एक भाग्यवान, कोई भाग्यवान ब्रह्मांड भ्रमित कोई भाग्यवान जीव, जीव सिंगुलर में लिखा है, एक वचन में जीव है, कोई एक भाग्यवान है। कौन भाग्यवान है, गुरु कृष्ण पाए भक्ति लता बीज, गुरु और कृष्ण की कृपा से जिसको भक्ति की लता का बीज प्राप्त होता है वो भाग्यवान है। इसका मतलब संसार के अंदर लाखों करोड़ों लोग रोज मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, लेकिन कोई मुश्किल से ऐसा है जिसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा होती है कि कोई प्रमाणित वैष्णव कृष्ण भक्त गुरु मिलता है। आध्यात्मिकता की गाड़ी गुरु और कृष्ण दो की पटड़ी के ऊपर चलती है, कृष्ण की कृपा से गुरु मिलता है और गुरु की शिक्षा से कृष्ण मिलता है। भगवान कृपा करें इसका क्या प्रमाण है, गुरु मिला, और गुरु की शिक्षा और दया और करुणा और कृपा का क्या प्रमाण है, कृष्ण मिला। तो ये दो पटड़ी के ऊपर गाड़ी चलती है। जब भी कोई लोग कृष्ण को निकालकर केवल गुरु के ऊपर ही बल देंगे कि गुरु ही हमारे लिए सब कुछ है, कृष्ण का नाम निशान ही मिटा देंगे, तो एक पंथ चालू हो जाएगा, वो पंथ हो जाएगा उस गुरु का पंथ, फिर दूसरे गुरु का पंथ, फिर तीसरे गुरु का पंथ। इसलिए सारे पंथ दुनिया के अंदर शुरू हो गए, क्योंकि उसने भगवान को अलग कर दिया। और कोई केवल कहे हम भगवान की आज्ञा मानेंगे, गुरु की हमको जरूरत नहीं है, तो वो फैनेटिक बन जाएगा। फैनेटिक का मतलब क्या है, कट्टरवादी बन जाएगा, बहुत कट्टरवादी बन जाएगा। अब तुमको कब भगवान ने कहा, मैं भगवान की आज्ञा मानता हूं, भाई तुम्हें भगवान ने कहा क्या आके, नहीं भगवान ने कब, तो अरे भगवान की बात समझाने के लिए साधु संत होता है, उसके बीच में नहीं लाओगे तो दुनिया में आतंक फैला दोगे। तो जो दुनिया में जो गुरु को बिल्कुल नहीं मानने वाले हैं वो फैनेटिक हैं, बहुत बड़े आतंकवादी, वहां गुरु का कोई महत्व है ही नहीं। और जो भगवान को निकाल दिया है बिल्कुल, कृष्ण काल का रूप है, राम राम जपने से कुछ नहीं होता है, ये पंथवादी हैं, जो गुरु का अपना पंथ बढ़ा रहे हैं, भगवान को बाहर निकाल दिया। ये चेतना महाप्रभु का ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है कि गुरु कृष्ण कृपा, दोनों की कृपा चाहिए, एक की नहीं, दोनों का महत्व बहुत बराबर है, समान है। शास्त्र में जो लिखा है वो भगवान ने दिया, लेकिन शास्त्र को समझाने के लिए गुरु चाहिए। तो बहुत से लोगों का ये मानना है कि गुरु की क्या जरूरत है, शास्त्र में लिखा है सब कुछ, शास्त्र में से हम सीख लेंगे। तो ये तो साधारण आम भाषा में भी संभव नहीं है। कोई कहे कि बाजार के अंदर से मैं डॉक्टरी की किताब पढ़ के डॉक्टर बन जाऊंगा, तो नहीं हो सकता। इस दुनिया में भी ये संभव तो नहीं है ना कि कोई एमबीए का किताब लेके घर में पढ़े एमबीए बन जाए, ये तो संभव नहीं है। इंजीनियरिंग का किताब घर में पढ़ने से कोई इंजीनियर तो नहीं बन सकता है ना। ये दुनिया में हो सकता है कैसे? जब दुनिया में नहीं हो सकता है तो अध्यात्म का कैसे होगा? फिर भी लोग कहते हैं कि गुरु की क्या जरूरत है, सब कुछ शास्त्र में पढ़ा है ना। तो एक छोटा सा उदाहरण किसी ने बड़ा अच्छा दिया है कि स्त्री और पुरुष के अंदर घर में झगड़ा हो गया, 5-6 दिन आपस में बातचीत करना बंद हो गई, पांचवें दिन सुबह सवेरे 4 बजे वाली गाड़ी से पतिदेव को कहीं जाना था बाहर, और उठने की आदत थोड़ी देर से थी उसकी, तो उसने एक चिट्ठी के ऊपर 2 शब्द लिख के अपनी पत्नी को दिया, चिट्ठी रखी उसके सामने, बोला नहीं। पत्नी समझा चलो चिट्ठी लिखी है तो शायद अब झगड़ा समाप्त हो गया, राजीनामा हो रहा है। लेकिन चिट्ठी को देखे पढ़ा तो लिखा, मुझे सुबह सवेरे 3:30 बजे उठाना, 4 बजे की गाड़ी पकड़ना। पत्नी का अभी भी आदेश ही लिखा है, कुछ समझोगे तो ये बात तो है नहीं। तो पत्नी ने 3:30 बजे उठी, उठकर बहुत बड़ा ड्राइंग पेपर बच्चों का निकाला, मार्कर पेन निकाली, लिखा, पतिदेव 3:30 बजे हैं, आप उठ जाइए, आपकी 4 बजे ट्रेन है, और पतिदेव के बेड के सामने चपका दिया और सो गई। पतिदेव तो सुबह सूरज उगने के बाद ही सूरजमुखी थे, उठेंगे बाद में। उठे और हड़बड़ा के बोला, अरे तुमको कहा था मुझे उठाना, मेरी गाड़ी निकल गई, तुमने उठाया क्यों? बोला कब कहा था? बोला चिट्ठी तो दी थी। बोला वो तो चिट्ठी मैंने भी लिखी। चिट्ठी तुमने दी थी, चिट्ठी मैंने भी लिखी, लेकिन चिट्ठी उठा नहीं सकती, आदमी उठा सकता है। सो किताब आप गलत काम करोगे रोकेगा नहीं, गुरु होगा तो रोकेगा, किताब कैसे रोकेगा आपको? तो इस छोटे से उदाहरण से वो सिखाना ये चाहती थी कि आदमी होगा तब कोई जगाएगा, नहीं तो कैसे जगेंगे? शिक्षा के लिए चाहिए, और शास्त्र को सिखाने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। ये दूसरी बात है कि प्रमाणित गुरु मिलना मुश्किल है, इसका अर्थ ये थोड़ी है कि गुरु है ही नहीं, ये गुरु चाहिए ही नहीं। भाई बहुत धोखेबाज लोग आ गए हैं मार्केट में, इसलिए डर लग रहा है गुरु करने से, तो इसका अर्थ ये थोड़ी कि हम टैक्स नहीं दे रहे इसलिए बिल्डिंग को ही मिटा दें। भाई जिस चीज का नाम है तो उसका अस्तित्व है, तब नाम आया ना, गुरु ने तो नाम कहां से आएगा? और भगवान से मुख से ये निकल रहा है, और जब जब भगवान इस धरती के ऊपर अवतार लेके आए हैं तो किसी गुरु के पास जाके शिक्षा ग्रहण की है, सिर्फ हमको सिखाने के लिए, भगवान को जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी गुरु के शरण में जाके शिक्षा ग्रहण। लेकिन कहीं भी उस शिक्षा के अंतर्गत ऐसे नहीं लिखा है कि गुरु ने हाथ लगाया और भगवान बस उसके बाद सब कुछ सीख गए और अपने घर आए, ऐसे कहीं नहीं लिखा। 64 दिन कृष्ण भगवान रहे सांदीपनि मुनि के पास उज्जैन में, तब 64 शिक्षाएं सीख के आए। 18 अध्याय पूरे भगवत गीता के अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से सुने, तब उनकी बात को स्वीकार किया। ऐसे कृष्ण कह सकते, अर्जुन मैंने तुमको हाथ लगा दिया तो तुम्हें सब ज्ञान आ गया, अब जाओ करो। गीता का कहने की जरूरत क्या थी? 18 अध्याय कोई जरूरत थी क्या गीता कहने की? और भगवान रामचंद्र तो 6-7 साल की 8 साल की आयु में गए वशिष्ठ के आश्रम में, और जवान होके 25 साल की 18-20 साल की उम्र में वापस लौटे, तब तक गुरु आश्रम में ही रहे। तो सभी प्रायः गुरु शिक्षा ग्रहण की है, शिक्षा ग्रहण की है, मंत्र में शिक्षा। अब आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे भक्ति की लता का बीज मंत्र नहीं है। भक्ति लता बीज जो है वो मंत्र नहीं है, वो नेम है, वो नेम है, रूल्स रेगुलेशन और साधना है, वो शिक्षा से प्राप्त होती। भक्ति की लता का बीज, ये हिंदी में कोई पढ़े इसको ठीक तरह, अंग्रेजी में ये शब्द यहां लिखा है, उन्हें बीज का एक बहुत बड़ी परिभाषा है, भक्ति लता बीज। इसके बाद वाले श्लोक 152 वर्ष के सेकंड पैरा में है भक्ति लता बीज, या थर्ड पैरा गुरु प्रसाद, सेकंड पैरा, थर्ड पैरा है भक्ति लता बीज, मींस सीड ऑफ डिवोशनल सर्विस। भक्ति लता का बीज क्या है लिखा है, भक्ति लता बीज रिसीव फ्रॉम स्पिरिचुअल मास्टर क्या है, अन्य विलीशता शून्य बीज। इसके ऊपर सेपरेट चर्चा कभी करनी पड़ेगी। भक्ति की लता का बीज नाम नहीं है, मंत्र नहीं, नेम है। नाम तो सब भगवान है साक्षात, भक्ति की लता का बीज नाम नहीं है। हरे कृष्ण मंत्र भक्ति की लता का बीज नहीं है, तो गुरु से जो मंत्र मिलता है वो भक्ति की लता का बीज नहीं है। भक्ति की लता का बीज नेम है, रूल्स एंड रेगुलेशन, जो शिक्षा है वो भक्ति की लता का बीज है। और फिर वो भक्ति की लता का बीज कौन आरोपण करता है, गुरु करता है, इसका मतलब शिक्षा गुरु देता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, नेम, वो भक्ति की लता का बीज है। इसका मतलब चार नेम पालन करते हैं, ये भक्ति की लता का बीज है। सुबह सवेरे उठना है, ये भक्ति की लता का बीज है, तभी भक्ति की लता का बीज, यही बीज है। तो ये दो श्लोक, इसके ये और इसके बाद वाले श्लोक को ठीक तरह से समझना चाहिए कि भक्ति का बीज क्या है। मंत्र भक्ति का बीज नहीं है, ये पहली बात ठीक तरह समझ में आनी चाहिए। विश्वास तो गुरु मिलने से पहले है, विश्वास एक उसके अंतर्गत आदव श्रद्धा, पहले तो श्रद्धा होनी चाहिए, अथ साधु संग, दूसरा स्तर मिलेगा जब हमारा विश्वास होगा तब हमको भगवान का भक्त मिलेगा, अथ भजन क्रिया, तब वो हमारे को भजन की क्रिया बताएगा। वहां भी भजन से ज्यादा महत्व क्रिया के ऊपर है, कैसे भगवान का भजन करना चाहिए। फिर होगी अनर्थ निवृत्ति, तब जाके हमारे अंदर जो अवगुण है वो अपने आप ही दूर होने शुरू करेंगे, हो जाएंगे। तो भक्ति के लता का बीज का मतलब भजन क्रिया, कैसे भगवान के नाम को जपा जाए, उसकी जो नियमावली है वो भक्ति का बीज है। तो ये दो श्लोकों के भावार्थ को आपका होमवर्क है, कौन सा श्लोक, चेतना चरितमृत मध्य लीला 19वां अध्याय 151 152 इन श्लोकों के भावार्थ को ठीक तरह से पढ़ना तो आपको भक्ति का बीज क्या है ये पहले समझ में आना चाहिए। तो फिर भक्ति के बीज आरोपण तो करेगा गुरु, फिर क्या करना पड़ेगा? फिर कहते हैं उसके बाद क्या करना पड़ेगा, माली हैया करे से बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन। और उसके बाद गुरु ने तो शिक्षा दे दी, लेकिन उसके बाद रोज भागवत सुनना है, रोज भगवान का नाम जपना है, ये पानी देना है बीज को, ये पानी है बीज का, तब बीज अंकुरित होगा। तो यहां छोड़ते हैं, अगली बार समय मिला तो ये बहुत मुख्य है ठीक समझ में आना के बगैर नेम से, जब तक कोई नेम टेम नहीं है तो वो नाम जपने का कोई विशेष लाभ भी नहीं है। भक्ति का बीज नेम है, साधन भक्ति का बीज है। इसलिए पूछेंगे सनातन गोस्वामी के साधन क्या है, उसका प्राप्त करने का साधन क्या है। भगवान की भक्ति के लता का बीज तो दे दिया गुरु ने, उसका फल क्या है? कृष्ण प्रेम। फल तो कृष्ण प्रेम है, लेकिन साधन क्या है? संबंध और अभिधेय साधन है। संबंध का मतलब कृष्ण के बारे में जानकारी शास्त्र से, और अभिधेय का मतलब उनकी सेवा में लगना। तो सेवा और कृष्ण कथा का श्रवण, ये असल में बीज के स्थान के ऊपर काम करते हैं। इसका मतलब साधना महत्वपूर्ण है। रूल्स एंड रेगुलेशन इज सीड, एग्जैक्टली वर्ड ये मिलेगा। तो प्राय हम जप करने का प्रयास करते हैं, लेकिन रूल रेगुलेशन फॉलो करने के लिए हमारे में उतना दृढ़ संकल्प नहीं धारण कर रहे। तो इसका मतलब बीज ही कमजोर है तो लता ऐसे ऊपर जाएगी कैसे? लेकिन ये लता ऐसी है जो किसी और का सहारे की जरूरत नहीं है। इस लता को किसी और लता के लिए कोई सहारा चाहिए तब ऊपर जाएगी, लेकिन भक्ति की लता को किसी के सहारे की जरूरत नहीं, ये स्वतंत्र भगवान के चरणों में जाके लपट जाती है। लेकिन बीच में क्या क्या रुकावटें आएंगी इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज तो यहां समाप्त करते हैं, प्रश्न उत्तर के लिए कुछ समय रखते हैं। लेकिन आपको आज के सत्संग से ये बातें, तीन रूप गोस्वामी की शिक्षा इस अध्याय का नाम है, और मुख्य बात यह है कि कृष्ण भक्त अति दुर्लभ है। इसका मतलब आप भाग्यशाली हो, कृष्ण भक्ति कर रहे हो और ये शब्द भगवान के मुख से निकल रहे हैं, और भगवान के मुख से भी राधा भाव में जब कृष्ण आए हैं, इसका मतलब भक्ति की परिकाष्ठा राधा रानी है। भक्ति की श्रोमणी, जो श्रोमणी का मतलब सिर के ऊपर लगी हुई मणि, मतलब भक्ति की परिकाष्ठा, जो हाइट ऑफ भक्ति है वो राधा रानी के हृदय में है, और उस हृदय से ये शब्द निकल रहा है कि कृष्ण भक्ता अति दुर्लभ। तो आप भाग्यशाली होकर कृष्ण भक्ति की तरफ आपके कदम आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको इस भक्ति को ठीक तरह से प्राप्त करने के लिए भक्ति, ये तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा हुई है, तब आपको कृष्ण भावना अमृत संघ के साथ आपका संबंध हुआ है, आपका मिलन हुआ है। ये कृष्ण भावना अमृत संघ, ये हरे कृष्ण संस्था के साथ आपका संबंध होना, आपका जुड़ना, ये कृष्ण कृपा है, ये कृष्ण कृपा माननी चाहिए। अब इस संघ के अंतर्गत साधु के किसी गुरुजन साधु से भक्ति के बीज को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। कृष्ण कृपा तो हो ही गई कि आपको ये बहुत अच्छा कृष्ण भक्ति का आंदोलन मिला है, अब आपको भक्ति के बीज को गुरुजन से प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और वो भक्ति का बीज है नेम का पालन। तो फिर भक्ति की लता बढ़ेगी और उसका अमृतमय रस का फल मिलेगा। बहुत सुंदर इसकी शिक्षाएं आगे हैं, पूरा भक्ति रसामृत सिंधु इसी की शिक्षा के ऊपर आधारित है, आगे इससे आगे ये शिक्षाएं। तो अच्छा है, कोई आगे अगले संडे भी इसी को कोई आगे पढ़े तो अच्छी बात है। और इसके बाद सनातन गोस्वामी की शिक्षा है, वो भी बहुत सुंदर है। चार प्रश्न सनातन गोस्वामी पूछते हैं, मैं कौन हूं, मैं संसार में दुख क्यों भोग रहा हूं, जीवन का लक्ष्य क्या है और प्राप्ति का साधन क्या है। ये चार प्रश्न सनातन गोस्वामी के हैं, मैं कौन हूं, दुनिया में दुख क्यों भोग रहा हूं, जीवन का लक्ष्य क्या है और उसको प्राप्त करने का साधन क्या है। अमी के, मैं कौन हूं, तापत्रिय, क्यों मेरे को कष्ट दुनिया में भोगने पड़ रहे हैं, साधन साध्य नहीं जाने, साधन क्या है साध्य क्या है इसके बारे में मैं नहीं जानता हूं। और महाप्रभु कहते हैं, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, तुम्हारी पहचान तुम बोलते हो मैं कौन हूं, तो मैं आपको बताता हूं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आप नित्य कृष्ण के दास हो, तो दुखी क्यों है, कृष्ण भूल गया, जीव बाहर मुख, कृष्ण को भूलने से माया से दुखी होता है संसार में जीव, कृष्ण बेमुख जीव दुखी है। हम दुनिया में दुख क्यों भोग रहे, कृष्ण को भूलने के कारण। इसका मतलब दुख से मुक्त होना है तो कृष्ण को याद करना है। साध्य क्या है, भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति, और साधन क्या है, अभिधेय संबंध, अभिधेय प्रयोजन, ये तीन इसके पूरा इसके ऊपर अध्याय है, इसके बाद वाला अध्याय इसके ऊपर है। तो ये कृष्ण भावना अमृत संघ में ये महत्वपूर्ण शिक्षा इन दो अध्यायों में है, इसको ठीक तरह से समझ लें। अगर इन 21 दिन हमारे पास है चेतन महाप्रभु के 2011 के आविर्भाव के, तो इन दो अध्यायों के ऊपर चर्चा की जाए आने वाले 2-3 सप्ताह में तो अच्छी बात है। और घर में भी ये दो अध्याय आप पढ़े, आपका होमवर्क जो भक्त है, 19वां और 20वां अध्याय, तो बहुत अच्छी बात है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा? संबंध के वो आचार्य हैं, संबंध के आचार्य का अर्थ हुआ वो हमको सिद्धांत बताते हैं, सिद्धांत का अर्थ हुआ कि भक्ति का बीज, वो हमारे को नियमावली सारी बताते हैं, संबंध नियमावली संबंध के माध्यम से आएगी। तो हमारा भगवान कृष्ण से संबंध कैसे हो, कृष्ण की जानकारी कैसे प्राप्त करें, साधन क्या है उसका, वो संबंध हो गया। और रूप गोस्वामी है सेवा, अभिधेय का मतलब सेवा, भगवान की सेवा में लगना, तो सेवा के आचार्य हैं प्रयोजन अपने, अभिधेय के आचार्य रूप गोस्वामी है, कि हमको सेवा प्राप्त हो रूप गोस्वामी से ये मांगना। रघुनाथ दास भट्ट प्रयोजन आचार्य हैं कृष्ण प्रेम प्राप्ति के। तो ये बहुत बड़े महत्वपूर्ण तीन हमारे राधा मदन मोहन संबंध के, मदन मोहन के पास भगवान के संबंध की प्रार्थना करनी है सनातन गोस्वामी के माध्यम से, राधा गोविंद देव जी अभिधेय रूप गोस्वामी के माध्यम से, और गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ और रघुनाथ दास गोस्वामी प्रयोजन, ये तीन गौड़ीय वैष्णव और प्राण, ये तीन ठाकुर गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, ये प्राण है गौड़ीय वैष्णव के, ये तीन विशेष। हाँ जरूर है, मंत्र उधर लिखा है सनातन गोस्वामी का, रूप गोस्वामी का तो हमको मालूम है, सनातन का भी है, रघुनाथ दास का भी, अपने उनके सूचक कीर्तनों में उनका लिखा हुआ है, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। शास्त्रों के अंदर से गोस्वामी के चाहिए तो सबका मिल जाएगा। चलो इसका भी सनातन गोस्वामी की समाधि के वहां लिखा होगा, देख के अगली बार लिख के रख देंगे। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी। हाँ हाँ प्रभुपाद जी, किसी ने पूछा कि क्या गुरु सब कुछ जानता है, उन्होंने जवाब दिया जितना कृष्ण उनको चाहता है उतना ही वो जानता है। इसका मतलब जो कृष्ण के विषय में जानता है जितना कृष्ण उसको कहता है। गुरु बड़ा छोटा नहीं होता है, गुरु एक ही होता है, भगवान एक गुरु एक, एक पूरा प्रभुपाद जी का एक लेक्चर है साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में, आत्म साक्षात्कार के विज्ञान में, गुरु इज वन। भगवान जब एक है तो गुरु भी एक है। उसका नाम अलग हो सकता है, उनका देश अलग हो सकता है, उनकी शक्ल अलग हो सकता है, लेकिन उनकी शिक्षा एक ही होनी चाहिए, क्योंकि एक भगवान की तरफ ले जाना उनका उद्देश्य है। जो वो उद्देश्य पूरा नहीं करते हैं उसको गुरु कहने की जरूरत भी नहीं। वो भी इंजीनियरिंग करने के लिए बोनाफाइड यूनिवर्सिटी में बोनाफाइड टीचर के पास जाके पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए टीचर कौन सा चाहिए? बोनाफाइड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का। ऐसे तो बहुत सारे इंजीनियर हैं, लेकिन वो इंजीनियरिंग आपको नहीं पढ़ा सकते और डिग्री नहीं दे सकते हैं। डिग्री कौन देगा? बोनाफाइड यूनिवर्सिटी। ऐसे जो बोनाफाइड संप्रदाय के अंतर्गत गुरु है, जो बोनाफाइड संप्रदाय परंपरा से आ रही है, उसके अंतर्गत जो गुरु है वो हमको वो चीज दे सकता है। जैसे किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद डिग्री मिलेगी। कोई भी इंजीनियर किताब हमको पढ़ा के इंजीनियर नहीं बना सकता। रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ही इंजीनियरिंग की माननीय डिग्री देगी। ऐसे परमानंद संप्रदाय, परमाणिक जो संप्रदाय है वो यूनिवर्सिटीज हैं, जिनके अंदर अनादि काल से शिक्षा को दिया जा रहा है। उस परंपरा के अंतर्गत, उस परंपरा में, उस प्रणाली में, उस संप्रदाय में जो साधुजन है, इससे और उनको भी यह सेवा, उनसे भी बहुत ज्यादा ज्ञानी हो सकते हैं उसी संप्रदाय में, लेकिन उनको ये सेवा दी जाती है कि ये कार्य भक्ति के लता का बीज आप करो। इससे बहुत सारे रिटायर्ड प्रोफेसर है लेकिन नहीं पढ़ाते हैं अभी। इसका मतलब ये नहीं कि उनको आता नहीं है, वो रिटायर हो गए तो पढ़ा नहीं रहे हैं। रिटायर्ड प्रोफेसर, जो प्रोफेसर एक रिटायर हुआ यूनिवर्सिटी से, वो पढ़ा तो नहीं रहा है, लेकिन पढ़ा दूसरा रहा है जो नौजवान अभी है। तो इसका मतलब नहीं है कि इससे जो रिटायर है उसको कुछ आता नहीं है, लेकिन उसने वो काम नहीं करना है। ऐसे बहुत से साधु संत हैं। इसलिए संत एक होते हैं जो गुरु का काम नहीं करते हैं। गुरु का काम संप्रदाय किसी व्यक्तियों को सेवा के रूप में देती है कि ये सेवा संप्रदाय की आपको करनी है। तो गुरु सेवक है संप्रदाय का। अपने पूर्वज जो गुरु हैं उनके सेवक के रूप से उस कार्य को निभा रहा है। और गुरु शिक्षा हमको भगवान की सेवा की देता है, अपनी पूजा की नहीं कराता। तो बेसिकली गुरु सेवक है। वो गुरु के नाते उन्होंने कह दिया अपने शिष्यों को, अपने शिष्यों को कह दिया और हम सबको भी कह दिया, लेकिन फिर भी बात यहाँ अटक गई कि शिक्षा कहाँ से लेंगे। तो ये ऐसी शिक्षा हो गई जैसे वो कागज चपका दिया, 4 बजे उठा नहीं।
फिर
ज्ञान दीजिए नहीं। प्रभुपाद जी सबके शिक्षा गुरु हैं। पूरे आने वाली कई पीढ़ियों के प्रभुपाद जी शिक्षा गुरु हैं। लेकिन फिर भी दीक्षा गुरु एक प्रणाली है जिसको अपनाना पड़ता है इस मार्ग में आगे चलने के लिए। भाई इतना ही काफी है, लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है। ये भी कोई चाबक उठा के कहेगा तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? जो ये पीछे वाला ऐसा नहीं, कहने में बहुत आसान है 4 नियम, लेकिन 4 नियमों को पालन करने वाले भी कोटि में कोई एक है। कहना आसान है लेकिन इसको पालन करना बहुत मुश्किल है। ज्ञान तो कुछ है ही, जरूरत ही नहीं है। ज्ञानियों को तो छोड़ दिया। ये छोटे से छोटा काम बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल कहने का मतलब इसके अंदर इन 4 नियम और 16 माला जपने में परफेक्ट होना इतना आसान नहीं है। परफेक्ट होने का मतलब सिद्ध होना, एक शब्द होता है सिद्ध होना। ये तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ कथा इसलिए बताई जा रही है ताकि इसके ऊपर आपका विश्वास दृढ़ होता जाए। इसी चीज को ठीक तरह सिखाने के लिए ही ये कुछ कर रहे हैं। वो कैसे ठीक तरह से करेंगे उसके लिए शिक्षा जरूरी है, काम तो उतना ही करना है लेकिन उसके लिए ये शिक्षा बहुत जरूरी है। रोज अगर नहीं श्रवण करेंगे तो ये हमारा जप आस्ते आस्ते ढीला पड़ने लगेगा, नेम ढीले पड़ने लगेंगे। हमारा अनुभव है, आप संघ से भक्तों से दूर हो जाओ ये सब चीजें आपसे आस्ते ढीला होना शुरू हो जाएंगे। ये तो केवल संघ है, जो भी है। ये आपका क्या प्रश्न था बेटी?
आपने बताया था वृंदावन में प्राचीन मंदिर है,
जिसमें
आपने
बताया 8 और 9 में बताया।
तो बाकी 7 कौन से हैं?
7 मदन मोहन का पहला मंदिर मदन मोहन, फिर है राधा गोविंद देव, फिर है राधा श्याम सुंदर, फिर राधा दामोदर, राधा रमन, राधा गोलोकानंद गोकुलानंद और राधा गोपीनाथ, ये 7 हो गए। 8वां बांके बिहारी, 9वां राधा, बाद में गोपाल भट्ट गोस्वामी के एक शिष्य हुए जो फिर उनके किसी तरीके से कोई मतभेद हो गए कुछ, उन्होंने फिर अलग राधा वल्लभ। तो ये जो है ये प्राचीन प्रमाणित बाकी बहुत सारे बाद में बने हैं लेकिन